તારીખ 2/1/1997 શ્રી સમયસર કલશ ટીકા શ્લોક 13 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું બાંધણીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 29
શ્રી સમયસર કલશ ટીકા 13મા કલશ સ્વાનુભૂતિ કરવી કલશ સ્વાનુભૂતિ કૈસે હોતી હૈ સ્વ મને આત્મા સ્વ મને આત્મા સ્વાનુભૂતિ કહો યા આત્માનુભૂતિ કહો સ્વાનુભૂતિ મને આત્માનુભૂતિ और अनुभव ज्ञान की पर्याय है। अनुभव है वो ज्ञान की पर्याय है। तो भेद से कहो तो ज्ञानानुभूति है। ज्ञानानुभूति है वो भेद से कहने में आती है। और भेद से कहो तो आत्मानुभूति है। और अपनी मुख्यता से कहो तो स्वानुभूति है। वो स्वानुभूति मोक्ष मार्ग है। स्वानुभूति है वो मोक्ष का मार्ग है, यानी मोक्ष का उपाय है। मोक्ष का उपाय और कोई चीज नहीं है। वो स्वानुभूति को नहीं समझते, वो मोक्ष मार्ग को की अन्यथा कल्पना करके, अन्यथा प्रयास करके उन मार्ग में चला जाता है, मोक्ष मार्ग में नहीं आ सकता। ये कलश में यह बात कहने का अभिप्राय है। आत्मानुभयात्मिकाया अनानुभूतियम एव कीर्ति विपा आत्मानम आत्मनि निवेश सुनिष्प्रकम्पम एकोस्ति नित्यम अवबोध घन समन्तात् खंडान्वय सहित अर्थ। आत्मा सुनिष्कम प्रकम्पम एक अस्ति। आत्मा अर्थात चेतन द्रव्य अशुद्ध परिणमंथी रहित शुद्ध होता है। अशुद्ध परिणमन का नाश होने से आत्मा शुद्ध होता है। प्रकंपन मैंने कंपन होना, कंपन होना मैंने अस्थिरता होना, चंचलता होना। वो चंचलता अशुद्धता का कारण है। चंचलता भी अशुद्धता का कारण है। जब आत्मा सर्वथा शुद्ध होता है तब चंचलता भी नहीं रहती, चंचलता भी मिल जाती है। चंचलता मैंने क्या कि उपयोग की अस्थिरता, स्थिर उपयोग स्वरूप में लगा रहे वो अचंचलता मैंने निष्प्रकंपता है। और इससे अशुद्धि मिटती है। चंचलता अशुद्धि को या मलिनता को ले आती है। चंचलता है आत्मा अशुद्ध परिणमंथी रहित शुद्ध होता है। कैसा है आत्मा? कि सदा सर्वांग, सदा सर्वांग ज्ञान गुण का समूह है, ज्ञान पुंज है। अवबोध घन, अवबोध मैंने ज्ञान, बोध मैंने ज्ञान, घन मैंने बहुत भरा है, घनिष्ठ घनिष्ठ ज्ञान जिसमें भरा है, ऐसा आत्मा पदार्थ है, ज्ञान का पुंज है। सर्वांग, सर्वांग मैंने हर प्रदेश में, आत्मा का एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां अनंत ज्ञान नहीं भरा हो। एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है कि जहां अनंत ज्ञान नहीं भरा हो, और एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां अनंत आनंद नहीं भरा हो, अनंत सुख नहीं भरा हो। जब हमारे आत्मा मैंने हमारा स्वरूप, जब हमारे प्रदेश प्रदेश में अनंत सुख भरा है, फिर हम दुखी क्यों क्यों हो? फिर दुख हमें किस बात का? क्यों हमें दुख इस बात का है कि हमारे में इतना सुख भरा है इसका विश्वास हमें नहीं। विश्वास नहीं, विश्वास क्यों नहीं है कि देखा नहीं है। जैसे कोई आजन्म दरिद्री के घर में संपत्ति है, संपत्ति घर में गाड़ी हुई है, उनको पता नहीं, वो भीख मांगता है, लोग उसको भीख मंगा कहता है, भिखारी कहता है, उसने अपनी संपत्ति देखी नहीं, इसलिए घर में संपत्ति इस बात का विश्वास भी नहीं है। ये हालत हमारी है संसार में। परिभ्रमण करता दुखी जीव को अपने में अनंत सुख भरा है वो विश्वास नहीं, वो प्रतीति नहीं, वो देखा नहीं। इसलिए भगवान वो दिखाते हैं, जिनेन्द्र भगवान भी यह दिखाते हैं, आचार्य भगवान भी यही दिखाते हैं, और ज्ञानी भगवंत भी यही दिखाते हैं। सर्वांग ज्ञान गुण का समूह है, ज्ञान का पुंज है। एक गुण का लिया तो सब गुण को ले लेना, सुख गुण ले लेना, आनंद गुण ले लेना, सब ले लेना। सदा को हो जाए, सदा काल को एक ही बैठ, सदा कालवाचक नहीं। क्या करके आत्मा शुद्ध होता है? आत्मा शुद्ध होता है मैंने मलिनता से रहित होता है, और शुद्धि का नाश कैसे करता है इसका मतलब ये हुआ, अशुद्धि मैंने राग द्वेष मोह चंचलता आदि सभी प्रकार के विकार। कि आत्मा आत्मनि निवेश्य, आत्मना मैंने अपने से, आत्मनि मैंने अपने में ही प्रविष्ट होकर के, अपने से अपने में प्रवेश होकर के सभी प्रकार की अशुद्धि का नाश करता है। अन्य द्रव्य में प्रवेश करता है तो अशुद्धि होता है। जैसे अपने यहाँ तो भी ये अशुद्ध घी है तो मिलावट वाला है
जी।
अशुद्धि का अर्थ क्या? मिलावट, एडल्ट्रेशन। आत्मा में अशुद्धि कहां से आई? कि अन्य द्रव्य में प्रवेश होने से, कर प्रवेश भाव। ऐसे तो कोई द्रव्य कोई पदार्थ में प्रवेश कर नहीं सकता, क्योंकि जगह ही नहीं, गुंजाइश नहीं, आत्मा में परमाणु की गुंजाइश नहीं, परमाणु में आत्मा जागे ऐसी गुंजाइश नहीं है। तो ये शरीर में आत्मा गया है कि नहीं गया है? शरीर में पुलाव नहीं है कहीं, वैक्यूम नहीं है, है? ये डॉक्टर साहब है, कोई वैक्यूम नहीं है, परमाणु का घन है, पूरा पूरा परमाणु ठासो ठास भरा हुआ है, कोई खाली जगह नहीं, और वहीं आत्मा है। फिर भी एक दूसरे में एक दूसरे का प्रवेश शरीर के एक परमाणु में भी आत्मा नहीं, आत्मा के और आत्मा में एक परमाणु का प्रवेश नहीं है, कोई प्रदेश में आत्मा आत्मा रहता है, परमाणु परमाणु रहता है।
बनने एक ही प्रदेश से उगाही होगा चलता,
एक प्रदेश निमित्त से एक प्रदेश, आकाश की जगह दोनों ने एक ही रोकी है, आकाश की कोई जगह है जीव ने भी रोकी है और परमाणु ने भी रोकी है, तो आकाश निमित्त है दोनों को जगह देने में, लेकिन जीव की जगह परमाणु ने नहीं रोकी, परमाणु की जगह, परमाणु की जगह जीव ने नहीं रोकी। उपादान में अपने अपने प्रदेश में है, उपादान की अपेक्षा अपने अपने प्रदेश में है, निमित्त की अपेक्षा एक प्रदेश में है, अलग अलग प्रदेश में है, ऐसी बात है। ऐसा द्रव्य से होने पर भी भ्रम से जीव भूल करता है कि अन्य का, अन्य द्रव्य का मेरे में प्रवेश होता है या हो रहा है। जैसे हम खाना खाते हैं, आज खीर खाई ना, कैसी लगी? मीठी लगी। तो ये मीठापन मेरे में लगा मैंने आया, मेरे में लगा मैं, मुझे लगा माने क्या हुआ, मेरे में आया, आया तो है नहीं, फिर भी लगा कि मेरे में हुआ कुछ, मैंने खाई फिर मेरे में आई, आई नहीं आत्मा में, फिर भी नहीं। एक परमाणु मात्र नहीं मड़े न स्पर्श ना, स्पर्श भी नहीं हो सकता, स्पर्श की क्रिया को कहते हैं स्पर्शना। एक परमाणु स्पर्श नहीं कर सकता आत्मा को, फिर भी जीव मिथ्या अनुभव करता है मेरे में आता है। ये भाव से मिलावट हो गई, मलिनता की उत्पत्ति हो गई, राग हो गया, खीर अच्छी है, खीर अच्छी लगती है, ये हो गया राग, ये अशुद्धि हो गई, मलिनता हो गई। इस तरह से वस्तु स्वरूप का अज्ञान जीव को, जीव में अशुद्धि को उत्पन्न करता है, और वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान शुद्धि को उत्पन्न करता है, अशुद्धि का नाश करता है। इसलिए जैन दर्शन में शुद्धि अशुद्धि वस्तु के विज्ञान के आधारित है। जगत के सभी धर्म संप्रदाय में उपदेश तो चला है, राग नहीं करना, दोष नहीं करना, लेकिन उसका विज्ञान कहीं भी नहीं है, साइंस नहीं है। हमारे यहाँ उपदेश है वो विज्ञान आधारित है, इसलिए उपदेश ठोस है, उपदेश है वो खाली उपदेश नहीं, ऐसा करिए वैसा मत करिए, ऐसा करिए वैसा मत करिए, कर्तव्य कर्तव्य का खाली के लिए उपदेश नहीं है। इसके पीछे पदार्थ का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप क्या है, वो विज्ञान का प्रतिपादन भगवान ने भी किया है, क्योंकि वो सर्वज्ञ थे, एक एक परमाणु का साइंस जानते थे, और जीव अरूपी होने पर भी इसका गुण धर्म वाला साइंस जानते थे। उन्होंने अपने दिव्य ध्वनि में इस बात का प्रतिपादन किया, इस तरह से उपदेश दिया है। राग नहीं करना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, वो बात अन्य धर्म में है, लेकिन कैसे नहीं होवे इसका विज्ञान नहीं है, ये फर्क है बड़ा। तो कहते हैं कि आत्मा आत्मा में प्रविष्ट होता है, आत्मा आत्मा में प्रविष्ट करता है भाव से। ध्यान का विषय क्या है, व्याप्य व्यापक भाव से अपने में अपने आप को वेदन करे, अनुभव करे, वो ध्यान का विषय है। ध्यान में अनुभव क्या होता है, कैसा होता है आत्मा का, तो व्याप्य व्यापक भाव से मेरे आत्मा में मैं ही प्रदेश प्रदेश में मेरी व्याप्ति है और किसी की व्याप्ति नहीं, और इसका ही मैं अनुभव करता हूँ। अपने ज्ञान वेदन से व्याप्य व्यापक भाव से मेरे क्षेत्र में मेरे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में मैं ही व्यापक होकर मेरे में मैं ही अपना ही अनुभव करता हूँ। मैं एक अखंड चैतन्य पिंड हूं, मेरे में किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता, इतना ऐसा अखंड हूं, इस तरह से। भावार्थ ऐसा है कि आत्मानुभव पर द्रव्य की सहाय से रहित है, आत्मानुभव करने में पर द्रव्य की कोई मदद नहीं है। क्योंकि आत्मानुभव है वो एक आत्मा का परिणमन है, और आत्मा परिणाम शक्ति के कारण स्वयं परिणमनशील है, उसको परिणमन करने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती। परिणमन होने के लिए परिणमन करने के लिए जरूरत पड़े वो तो सवाल नहीं है, लेकिन परिणमन को बंद नहीं कर सकते, चालू करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है, परिणमन को बंद नहीं कर सकते। तो छोड़ के ऐसे परमाणु भी परिणमन करता है, उसका परिणमन को भी रोक नहीं सकते, रोक लगाओ, कोई चीज को पुरानी होने मत दो, नई चीज हम लाते हैं, उपयोग नहीं करते तो भी पुरानी हो जाती है, या हम पुरानी करते हैं, नई चीज में कर्ता बुद्धि होने से मनुष्य ऐसा कहता है कि ये नई चीज मैंने बनाई, लेकिन किसी ने ऐसा बोला कि मैंने उसको पुरानी बनाई, पुरानी तो हो जाती है, स्वयं हो जाती है, क्योंकि परमाणु स्वयं परिणमन करता है, उसका परिणमन को कोई रोक सकता नहीं। ऐसे जीव को परिणमता हुआ रोको, नहीं रोक सकते, रोक नहीं सकते। तो आत्मा का जो आत्मानुभव है वो एक आत्मा का परिणमन है, वो स्वयं होता है, किसी की मदद से होवे ये वस्तु का स्वरूप नहीं। इस पर से बात क्या है कि मेरा स्वानुभव मेरे से अपने से होगा, इसमें किसी की मदद की अपेक्षा नहीं रखना। किसी की मदद की अपेक्षा रखूं ये वस्तु के स्वरूप में है, मैं स्वयं परिणमन करता हूं, बोलता या सुनता। भावार्थ ऐसा है कि आत्मानुभव परद्रव्य की सहाय से रहित है, इसलिए अपने में ही अपने से आत्मा शुद्ध होता है। अशुद्ध भी अपने में अपने से होता है, पर शुद्ध होता है तो भी अपने में अपने से होता है। कैसे अशुद्ध होता है? कि स्वरूप ज्ञान के अज्ञान के कारण। कैसे शुद्ध होता है? कि स्वरूप ज्ञान के कारण। बस
दोनों
बाजू एक ही बात है। यहां कोई प्रश्न करता है, राज में खुद प्रश्न उठाते हैं
जी।
यहां कोई प्रश्न करता है कि इस अवसर पे तो ऐसा कहा कि आत्मानुभव करने से आत्मा शुद्ध होता है, और कहीं और जगह ऐसा कहा है कि ज्ञान गुण मात्र अनुभव करने से आत्मा शुद्ध होता है, तो उसमें विशेषता क्या है, अंतर क्या है? दोनों शास्त्र की बात है। कोई जगह शास्त्र में ऐसी बात आती है क्या? यहां तो ऐसा ही कहा कि आत्मा आत्मा का अनुभव करे शुद्ध हो जाएगा। शास्त्र में वो भी बात है कि ज्ञान ज्ञान का अनुभव करे तो आत्मा शुद्ध होता है। ज्ञान गुण मात्र, ज्ञान वेदन गुण मैंने अनुवेदन, ज्ञान का वेदन को अनुभव करने से आत्मा शुद्ध हो जाता है, दो बात में क्या अंतर है? उत्तर ऐसा है कि विशेषता तो कुछ नहीं, एक ही बात है, एक अभेद से है और एक भेद से है, बात तो एक ही है, विशेषता तो कुछ नहीं। विशेषता तो कुछ भी नहीं, यही कहते हैं आचार्य देव, यही कहते हैं इस श्लोक में आचार्य देव कहते हैं कि या शुद्ध नयात्मिका आत्मानुभूति इति किल यम एव ज्ञानानुभूति इति बुद्ध्वा। जो आत्मानुभूति अर्थात आत्मद्रव्य का प्रत्यक्षपणे आस्वाद है, आत्मानुभूति मैंने आत्मस्वरूप का प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, दो बात लिया, प्रत्यक्ष रूप से एक और आस्वाद, इसका नाम आत्मानुभव है। वो कैसी है आत्मानुभूति? कि शुद्ध नहीं अर्थात शुद्ध वस्तु वही है आत्मा, अर्थात स्वभाव जिसका ऐसी है। शुद्ध नहीं अर्थात शुद्ध नहीं आत्मिका है, वो आत्मानुभूति कैसी है? कि शुद्ध नहीं आत्मिका है। शुद्ध नहीं मैंने क्या? कि शुद्ध वस्तु स्वरूप उसको अवलंबन लेने वाला ज्ञान का अंश उसको कहते हैं शुद्ध नहीं। आत्मा जो शुद्ध स्वरूप है, सहजात्म स्वरूप है, उसको विषय करने वाला, अवलंबन करके विषय करने वाला, उसको कहते हैं शुद्ध नहीं। ऐसा करने का जिसका स्वभाव है, ऐसा प्रणिमन करने का जिसका स्वभाव है, मैंने आत्मवस्तु का स्वभाव कैसा है? कि शुद्ध नय द्वारा अपने स्वरूप का अवलंबन लेकर के अनुभव करें, यही इसका स्वभाव है। स्वभाव भी ऐसा है, वस्तु भी ऐसी है। इसका भावार्थ ऐसा है कि निरुपाधिपने जीव द्रव्य जैसा है वैसा ही प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद में आवे, इसका नाम शुद्धात्मानुभव है। शुद्धात्मा का अनुभव किसको कहते हैं? कि निरुपाधिपने से जीव द्रव्य उपाधि बिना, उपाधि कब होती है? कि अन्य पदार्थ का किसी न किसी भाव को अपने में अवधारण कर लेना, तब उपाधि होती है। अन्य पदार्थ का कुछ भी भाव को अपने में अवधारण कर लेना। कैसे? कि जैसे आत्मा स्वपर प्रकाशक होने से ज्ञान में अन्य द्रव्य का प्रतिबिंब होता है, तो अपन देखे कि चक्षु इंद्रिय से हमको अनेक वर्ण दिखता है। चक्षु इंद्रिय से क्या दिखता है? उद्गल परमाणु जो अनेक वर्ण रूप परिणमन कर किया हुआ है वो दिखता है। अब उपाधि कहाँ से पैदा होती है? वो प्रतिबिंब हो गए इसलिए उपाधि नहीं होती है, लेकिन इसका कोई भाव को अवधारण करने से उपाधि होती है। तो कहाँ से होती है? कि ये कलर अच्छा है, किसी एक वर्ण में एक रंग में अच्छापन की कल्पना करते हैं। तो किसी भी रंग से वर्ण से ज्ञान को लेना देना क्या, ये बताओ? क्या लेना देना ये बताओ? है जब कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर ये कलर अच्छा है वो बात कहां से आई? ये उपाधि खड़ी होगी, यहां से उपाधि चालू हुई। तो वो जीव क्या बोलता है, क्या कहता है? कि हमको अच्छा लगा, ये तुमको लगा ये तुम्हारी उपाधि है, तुम्हारे में तो प्रतिबिंब हुआ है। जैसे अग्नि है और दर्पण है, शीशा, अग्नि का प्रतिबिंब पड़ेगा मिरर में, तो इससे क्या मिरर गर्म होता है क्या? अग्नि के प्रतिबिंब को झेलने वाला शीशा गर्म होता है क्या? नहीं होता है। तो जड़ भी भूल नहीं करता, ऐसी भूल तो जड़ भी नहीं करता। अब ये चेतन होकर के ऐसा करता है कि हमको गर्म लगता है, लेकिन तू चैतन्य दर्पण है, तुम्हें कैसे लगे? ये भूल चैतन्य करता है, जीव करता है, तो उसको उपाधि आ पड़ती है। यहां से आकुलता नाम दुख चालू होता है। जिनेन्द्र परमात्मा सर्वज्ञ देव अपने केवल ज्ञान में सारे विश्व को जानते हैं, कोई पदार्थ जानने का उसके ज्ञान में तो बाकी नहीं है, लेकिन वो उपाधि को नहीं ग्रहण करते। विश्व में कोई चीज जब जानने की बाकी नहीं रही तो कौन सा प्रसंग बाकी रहा बताइए? स्वर्ग के सभी प्रसंग जाने, नरक के भी जाने, उत्कृष्ट में उत्कृष्ट ले लेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट, लेकिन वो ज्ञान उपाधि को धारण नहीं करते। वो ज्ञाता दृष्टा भाव में रह जाते हैं, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव में रह जाते हैं, तो बीतराकता रहती है, राग उत्पन्न नहीं होता। लेकिन जो मात्र ज्ञान रूप होने पर भी मात्र ज्ञाता नहीं रहता, क्या कहाँ भूल होती है कि जीव तो मात्र ज्ञान स्वरूप है, मात्र ज्ञान स्वरूप होने पर भी मात्र ज्ञाता नहीं रहता तो उपाधि को खड़ी कर देता है, तो खुद ही करता है। जीव की भूल है, मिथ्यात् को भूल कही है शास्त्रकारों ने, मिथ्यात् को भूल कही है। कृपाल देव ने लिखा है मिथ्यात् को भूल, क्रिया वो कर्म, उपयोग वो धर्म, तो सूत्र तीन सूत्र लिखे हैं। भावार्थ ऐसा है कि निरुपाधिपने जीव द्रव्य जैसा है, जीव का स्वरूप कैसा है, मात्र ज्ञान निरुपाधिक है, वो इसका स्वरूप है, उपाधि करना इसका स्वरूप नहीं है, फिर भी कर लेता है तो दुखी होता है, नहीं करे तो सुखी होता है, करना नहीं करने के लिए वो स्वतंत्र है। ये कठिन भी एक आदमी कर... आने वाले को भिंडी कुछ कराती है क्या? जीव स्वतंत्र ये भाव करता है कि हमको अच्छा लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता है। वास्तव में अच्छा लगना नहीं लगना ऐसा कोई भिंडी में है ही नहीं, होता तो दोनों को यही हो लगता है। अगर अच्छा लगने वाली चीज होती तो दोनों को अच्छा लगती, अच्छा नहीं लगने वाली होती तो दोनों को अच्छा नहीं लगती, लेकिन दोनों को अलग अलग प्रकार का भ्रम है। वास्तव में अच्छा लगे नहीं लगे ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर खीर क्यों बनाई? अच्छी नहीं लगती तो क्यों बनाई? कल्पना करके बनाई कि अच्छी लगेगी तो खाने में रस आए बिना रहेगा नहीं, और रस आएगा तो अशुद्धि राग मलिनता उत्पन्न हुए बिना रहेगी। प्रयोग करना चाहिए, खाते खाते प्रयोग करना चाहिए कि इसमें अच्छापन क्या है, मीठापन है। मीठापन अगर अच्छा होता तो तुम खाते रहो ना, खाते खाते हाथ जोड़ना पड़ता है, अब नहीं खाएंगे, अब मत दो हमको, अब हमको मत खिलाओ, मेहरबानी करके अभी मत खिलाओ, क्यों भी अच्छा था ना, कहाँ गया तुम्हारा अच्छापन, चला गया किधर? देखो जीव कल्पना करता है, भ्रम से कल्पना करता है, रागादी अशुद्धि को उत्पन्न करके खुद ही हैरान परेशान होता है, और कोई बात नहीं। दुख का कारण अज्ञान है और सुख का कारण ज्ञान है। वस्तु स्वरूप का सही ज्ञान सुख का कारण है और वस्तु स्वरूप का विपरीत ज्ञान या अज्ञान दुख का कारण है। ये खोज ज्ञानियों ने की है। विश्व में बुद्धिमान होने पर ज्ञानी नहीं हो है, इसलिए सुख प्राप्त करने का कोई उपाय लोगों को नहीं मिलता है। सब दौड़ लगाते हैं, इधर से सुख ले लो, उधर से लो, इधर से लो, उधर से लो, मिलता नहीं। हम विदेश में गए इन दिनों में, यहाँ तो लोग कहते हैं सुखी है, क्या है, हम तो ज्यादा दुखी हैं। सुखी नहीं है, हम तो ज्यादा दुखी है, पैसे तो बहुत है इधर, तो कुछ भी है सुख नहीं है वो बात जरूर है, सुख नहीं है वो बात जरूर है, क्योंकि सब उपाधि के उपाधि से मारे मारे फिरते हैं। उपाधि वो दुख है, जीव का स्वरूप ही नहीं, उपाधि जीव का स्वरूप ही नहीं है। इसलिए कहते हैं कि निरुपाधिक रूप से जीव द्रव्य जैसा है वैसा प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन आवे, इसका नाम शुद्धात्मा अनुभव है। इसलिए जब किसी जीव को अपना शुद्धात्मा का अनुभव होता है तब उसको सुख का, शांति का, आनंद का अनुभव होता है। और ऐसा सुख शांति का अनुभव होता है, ऐसा सुख शांति का अनुभव होता है कि वचनातीत सुख का अनुभव होता है, बता नहीं सकता। ऐसा जगत में ऐसा कोई सुख शांति कहीं भी है नहीं। निश्चय से मैंने वास्तविक पुणे यह जो आत्मानुभूति कही वही ज्ञानानुभूति है। निश्चय से यह जो आत्मानुभूति कही वही ज्ञानानुभूति है, ज्ञानानुभूति कोई दूसरी चीज नहीं है। इतना मात्र जान करके आत्मा से आत्मा में व्याप्य व्यापक भाव में निरुपाधिक स्वरूप है, उसका जैसा है वैसा अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव करो, यही सुखी होने का उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। जितनी उपाधि ज्यादा इतना दुख भी ज्यादा। हमारे देश में पैसे पैसे वाले लोग कम थे, कम है भी कम और थे भी कम। दो पांच पीढ़ी से श्रीमंता हो ऐसा 1% मिलना मुश्किल है। करीब करीब लोग अपने पैर पर खड़े होते हैं। तो जवानी में कमाने का शुरू करता है और बुढ़ापन आते आते कुछ पैसा कमा लेता है। 20 साल की उम्र से करीब चालू करता है, 50-60 साल होने में कुछ ठीक ठीक संपन्न होता है। संपन्न होने से लोग समझते हैं कि देखो इतना परिश्रम करके ये आदमी सुखी हुआ, उस वक्त इसकी परिणति देखो तो दुखी हो गई है। क्या इसकी परिणति में क्या है? क्यों ऐसा क्यों? पहले तो साधन संपन्न नहीं था, अब साधन संपन्न है, फिर अब दुखी क्यों? उपाधि बढ़ा दी, क्या बढ़ाया? उपाधि बढ़ा दी। इतने समय में कुछ तो परिवार बढ़ा और कुछ पैसे भी, नहीं बढ़ा उसको नहीं बढ़ने का दुख है। देखो क्या विचित्रता है, किसी को नहीं भी बढ़ता है तो नहीं बढ़ा उसको नहीं बढ़ने का दुख है, और बढ़ा उसको बढ़ने से इसकी उपाधि चालू हो जाती है, तो दोनों दुखी संसार में, दोनों दुखी। क्या कारण है? कि उसको ज्ञान नहीं है कि सुख दुख कैसे होता है। जीव को सुख दुख कैसे होता है ये संसार में एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बुद्धिमान लोग तो बहुत है लेकिन सुख दुख का प्रॉब्लम मटेरियलाइज नहीं हुआ। हम तो ये प्रश्न पूछते हैं पढ़े लिखे लोगों को
जी,
ये जमाना तो मटेरियलिज्म का है, है ना? और बहुल भाग लोग जो बुद्धिजीवी हैं मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, है ना? तो आप सुख दुख को मटेरियलाइज क्यों नहीं करते? आपको ये प्रश्न तो उठना चाहिए कि कैसे होता है, दुख क्यों हुआ जीव को, सुख क्यों होता है, सुख दुख क्या चीज है वास्तव में, इसका साइंस क्या है, इसका मैथमेटिक क्या है, इसका लॉजिक क्या है। तीनों परखों से छानबीन करके उसका कोई स्वरूप तो निश्चित करो कि क्या चीज है, कैसे होती है। ऐसे ही मारे मारे फिरते हैं पैसे के पीछे और मल्टी मिलियनर्स हो जाते हैं वहां तो, फिर नींद आती नहीं, अच्छे से अच्छा गड्ढा होता है सोने के लिए तो बढ़िया से बढ़िया गद्दा होता है और चद्दर भी बहुत बढ़िया, लेकिन नींद नहीं आती क्योंकि वो गद्दा और चद्दर इसमें से नींद आती नहीं। हाँ, अगर इसमें से नींद आती तो जमीन पर सोने वाले को तो नींद आएगी नहीं कभी, लेकिन इसमें से तो नींद आती नहीं, और बढ़िया वाले को तो खास नींद नहीं आती, इसलिए कि उनको उपाधि ज्यादा है, लफड़ा बात उसको बहुत ज्यादा उपाधि। हाँ, वो बड़ी मोटर में नहीं बैठा है, अच्छी गाड़ी होती है ना, गाड़ी इसकी छाती पर बैठ गई ऐसे बोलते थे गुरुदेव। तो ये मेरी क्या, ये गाड़ी मेरी, और बाजार में जाए तो पार्किंग की उपाधि आज के जमाने में, कहाँ गाड़ी को पार्क करे इसकी उपाधि, जगह नहीं मिलती आजकल, न मुंबई में मिलती, न कलकत्ता में, न भावनगर में मिलती, हर जगह वो हालत होगी, उपाधि उपाधि उपाधि, वही दुख है और कुछ नहीं। कंफ्यूजन हो, ऐसी बात है, 10 रुपया का रिक्शा लेकर के बाजार में जाए, पार्किंग का कोई प्रॉब्लम है तो उसका नोट दिया, वो अपने घर रवाना अपने अपने काम पे। लोग समझते कि नहीं गाड़ी वाला सीख लिया, वो रिक्शा वाला नहीं, कंफ्यूजन हो जाए ऐसी बात है। ये क्या 10 रुपया देकर के उपाधि से मुक्त हो गया, ये रिक्शा वाले रिक्शा को क्या होगा, वो कोई विकल्प नहीं आएगा, और गाड़ी पार्क किया विकल्प आएगा, गाड़ी को कुछ कुछ करेगा तो नहीं, कुछ होएगा तो नहीं, पर कुछ भी होता है नहीं गाड़ी को, तो गाड़ी को होता है,
आपको होता है,
अपने को नहीं होता है, गाड़ी को नहीं होता है, अपने को होता है,
हार्ट अटैक आ
गया,
हार्ट अटैक आ गया।
एक आदमी था, नया मकान बनाया, फर्स्ट क्लास बढ़िया मकान बनाया, मकान बड़ा था, बोला कि चलो अच्छा मकान है, तो एक आदमी ने बोला कि भाई चलो मकान आपका अच्छा है, थोड़ा कुछ अंश बड़ा इतना मकान है किराए पर दे दो, हम अच्छा किराए देंगे, चलो ठीक बात है, आमदनी भी होगी। फिर एक दफे क्या हुआ तो उसको कोई जरूरत पड़ी तो दीवार में खिला ठोकने लगा, दीवार में खिला ठोकने लगा नए मकान में, तो इतना सा वो निकल गया, घबरा बोलते अपने आप देखा, अरे रंग रोगान इतना किया और उसने खिला ठोकर के, अभी तुम खिला मत वहां मत लगा, खिला लगाना हो तो मेरे माथे में लगाओ, मेरे मकान में मेरे मत लगाओ, मुझे दर्द होता है, तुम खिला तो मकान में लगा तो दर्द मुझे होता है। ये हालत उपाधि वाले को होता है, क्योंकि मकान मेरा, यही चीज वो किराएदार ने तो देखी, उसको दर्द नहीं हुआ,
बराबर।
खिला थोकने से जो भी निकल गया यहाँ से दीवार में से, तो प्रसंग तो दोनों ने देखा, किराएदार ने भी और मकान मालिक ने भी, दर्द एक को हुआ एक को नहीं हुआ, क्यों? मेरा है वो, ये उपाधि है। तो जो भी संपन्नता होती है उसमें मेरे को मिला, मेरे ये हुआ, मेरा ये हुआ, ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, ये मेरा हुआ, उतनी उपाधि बढ़ती है, उतना भय भी बढ़ता है
जी।
कुछ होगा, कुछ हो जाएगा, जो मेरे हैं उसको कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाए, हो सकता है, तो उसको नींद आने देता। अरे कुछ लोग तो ऐसे हैं, रात को नींद नहीं आए तो फिर चक्कर लगा ले पूरे घर में, क्यों? सब सलामत तो है, ये बात होती है। भावार्थ ऐसा है कि जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, जीव वस्तु का जो प्रत्यक्ष रूप से आस्वाद, उसको नाम से आत्मानुभव ऐसा भी कहने में आता है, अथवा ज्ञानानुभव ऐसे भी कहने में आता है, नाम भेद है, दोनों नाम अलग अलग है, बात एक ही है, दो बात नहीं है, वस्तु भेद नहीं है, एक ही वस्तु का नाम ज्ञानानुभव है, एक ही वस्तु का नाम आत्मानुभव है, जो अपना निरुपाधिक स्वरूप का अनुभव है उसमें, और कुछ उसमें है ही नहीं। ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, क्या है? ऐसा जानना, इति बुद्ध्वा, ऐसा लिखा है ना, ऐसा जान करके कि यही मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग दूसरा कुछ है ही नहीं, आत्मानुभव के सिवा दूसरा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ये सारे जैन दर्शन का टोटल एक जगह लगाया, यही बात करेंगे कि आत्मानुभव यही मोक्ष मार्ग है, कोई ग्रहण त्याग मोक्ष मार्ग नहीं है, कोई भेष मोक्ष मार्ग नहीं है। कुंकुन आचार्य ने 413 नंबर की गाथा में कोई लिंग, लिंग मैंने चिन्ह भेष, कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। कोई सफेद वस्त्र धारण करते हैं, कोई पीले वस्त्र धारण करते हैं, कोई दिगंबर हो जाते हैं, कोई मोक्ष मार्ग नहीं,
जाति वस्त्र भेद नहीं,
कोई मोक्ष मार्ग नहीं, स्वानुभव सिवा कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। ये जैन दर्शन का तात्पर्य है, 12 अंग का तात्पर्य वो है, ऐसा कहेंगे। ऐसा जानना कि आत्मानुभव मोक्ष मार्ग है, इस प्रसंग से यानी ऐसा कहने पर दूसरा भी संशय होता है, शंका होती है हमको कि कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, 12 अंग का ज्ञान, अरबों श्लोकों का ज्ञान है उसमें, कितना, करोड़ों ने, अरबों श्लोक है 12 अंग में, अभी तो इतना ज्ञान है नहीं किसी को, लेकिन अगर इस किसी को इतना ज्ञान हो जाए तो कहते हैं कि कोई अपूर्व लब्धि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के बिना 12 अंक का ज्ञान किसी को होता नहीं। 11 अंक 9 पूर्व तक होता है, लेकिन 12 अंक तो 11 अंग और 14 पूर्व है, इतना बाकी रह जाता है मिथ्या दृष्टि को। सम्यक दृष्टि को 12 अंक का ज्ञान है, फिर भी वो अपूर्व लब्धि नहीं। ऐसी बात है, कोई जानेगा कि द्वादशांग ज्ञान कोई अपूर्व लब्धि है, उसका समाधान ऐसा है के द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है, क्या है उसकी कीमत नहीं, विकल्प की कीमत नहीं। द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है, उसमें भी वो बारह अंग में भी ऐसा कहा है कि शुद्धात्मानुभूति मोक्ष मार्ग है। बारह अंग का तात्पर्य वो है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव होए वही मोक्ष मार्ग है। ज्ञान का विस्तार बारह अंग तक चला जाए तो भी विकल्प उतना बढ़ेगा, उसको मोक्ष मार्ग कहते हैं नहीं। क्यों? बहुत बहुत साफ बात है, सीधी साधी, कि करोड़ों अरबों श्लोकों का ज्ञान हुआ, वो करोड़ों अरबों जो श्लोक है वो तो शब्दात्मक है। किसका ज्ञान हुआ? शब्दों का। शब्द पुद्गलात्मक है, किसका ज्ञान हुआ? पुद्गल का। उसमें परसत्ता का अवलंबन है। शब्द ज्ञान वो क्या है? परसत्ता का अवलंबन है। और अनुभव क्या है? स्वसत्ता का, निज सत्ता का अनुभव है। परसत्ता का अवलंबन मोक्ष मार्ग कहे वो ज्ञानी नहीं। कोडरमल जी ने वो बात लिखी है रहस्यपूर्ण। कोई ज्ञानी परसत्ता अवलंबनशील ज्ञान को मोक्ष मार्ग कहेगा नहीं, और कहेगा तो वो ज्ञानी नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग में शास्त्र ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं, अनुभव ज्ञान की वैल्यू है। हमारे यहाँ भी प्रैक्टिकली ऐसा ही है। हमारे यहाँ कोई बड़ा इंडस्ट्री है, उसमें हमको टेक्नीशियन चाहिए, अकाउंटेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए ना। डिग्री वाले को बुलाते हैं, बड़ी से बड़ी डिग्री वाला आता है, उनको क्या पूछेंगे? अनुभव कितना? तुम्हारी पढ़ाई तो देख लिया हमने, देख लिया मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं, अनुभव कितना बोलो। एडवर्टाइजमेंट देते हैं मिनिमम 5 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, 5 साल का अनुभव हुआ है वही उसको आना है इंटरव्यू के लिए। अगर अनुभव नहीं है तो हमको इंटरव्यू भी नहीं लेना है, ऐसी बात है। अनुभव ज्ञान ही ज्ञान है, पढ़ाई वाला ज्ञान वो ज्ञान संसार में भी नहीं है। इतनी अनुभव की कीमत है। उसमें एक अच्छी घटना घटी थी, वो बाद में सुनाएंगे, अभी सुनाने लायक नहीं है तो बाद में करेंगे वो बात। लेकिन अनुभव ज्ञान क्या चीज होती है, लोगों को भी वो बात का ख्याल है, तो अनुभव की कीमत है। फिर भी एक दृष्टांत और है दे देते हैं। भावनगर समुद्र के किनारे पे पोर्ट है, जापान का करीब एक स्टीमर आया था, माल तो उसने खाली कर दिया, फिर उसको जाने का था, तो माल खाली करने में 15 दिन लग जाता है, तो उसका इंजन तो बंद कर देते हैं। स्टीमर का इंजन चलाने का कोई तो तेल बालने की बात हो जाती है, तो तेल जलाना तो नहीं होता 15 दिन, तो स्टीमर तो पड़ी रही, फिर चालू नहीं हो रही थी। उनके अच्छे अच्छे टेक्नीशियन थे, उस स्टीमर को चालू नहीं कर सके, और रोजाना बंदर का किराया इसके पर लगता है, डैमरेज, खाली करो प्लेटफॉर्म को वरना भाड़ा देना पड़ेगा। जैसे स्टीमर लाइन में खड़ी है और भी खड़ी हैं सब, एक एक दिन का किराया लगता है, चालू नहीं हो रही थी, और उनके पैसे लगते थे, उलझन में आगे क्या करें। उन दिन में प्लेन नहीं थे तो विदेश में अपने जापान से आए तो बहुत दिन लग जाते थे, करे भी क्या। किसी ने कहा कि भाई यहाँ एक आदमी है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन सूझबूझ वाला है, अनुभवी है, तो उसको बुला लें। तो ठीक है भी, एक ट्राई इसका भी कर लें। वाया देखा, अपने नज़र से देख लिया, बोला कि चालू कर दूंगा, बोलो जान आ गई सबको, कल हो जाएगा, हो जाएगा, कितना पैसा लगेगा, नहीं क्यों चालू कर दो। जो लोग उसको पहचान वाले थे उसने बोला तुम कल चालू कर दो, तो ऐसा नहीं, मेरे पैसे नक्की करो पहले। तो कि तुमको हम लोगों पे विश्वास नहीं है, विश्वास तो है लेकिन मैं ऐसा कच्चा काम नहीं करता, मेरा काम पक्का है, आपको चालू कराना है तो पहले पैसा नक्की करना पड़ेगा, वरना मैं हाथ लगाने वाला नहीं हूँ। तो बोलो 10,000 रुपया लगेगा, वो बड़ी रकम, उन दिनों में वो बड़ी रकम गिनी जाती थी, मजदूरी के पैसे 5-25 रुपया तो बहुत बड़ा है, मामूली मजदूरी के मजदूरी के पैसे लगते थे। कभी एक दिन की मजदूरी करे तो 2-4-5 रुपया मिले, लगेगा कभी कितना दिन लगेगा वो बात मत पूछो, टाइम क्या लगेगा कैसे लगेगा मत पूछो, मेरा चार्ज 10,000 रुपया है। कभी हम 10,000 नहीं देंगे तो और खर्चा 10,000 तो लग ही जाएगा अपने को, स्टीमर छोड़ के थोड़े जाने, लाखों रुपये के स्टीमर है छोड़ के कहाँ जाएंगे, पक्का के पक्का बदल नहीं जाना है। देखो तुमको अविश्वास कैसे आता है कि भाई देखो ये चीज ऐसी है, अविश्वास हुआ हो जाए ऐसी चीज है, क्योंकि नहीं पक्का पक्का, उसने 3 दफे कान पकड़ाया समझो, 10,000 देना ही है। तो उसने बोला कि एक हथौड़ा हमको दे दो, क्या बड़ा सा हथौड़ा, हथौड़ा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, घन घन मोटा मोटा घन। कई जगह टेस्टिंग किया, थोड़ा 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 टप 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 करके देख लिया, फिर एक जगह जोर से एक फटका लगाया, क्या जोर से एक फटका लगाया, इंजन चालू, स्टीमर चालू हो गई, स्टीमर चालू हो गई, लाओ 10,000। सब बेचारा एक फटका लगाने का 10,000, क्या बात करता है तू, दिमाग तो तुम्हारा ठिकाने है ना साहब, मेरा तो ठिकाने है, आप लोगों का ठिकाने नहीं है। 5 मिनट पहले आप लोग कान पकड़ते थे कि 10,000 पक्का, और आप मेरे दिमाग की बात करते हो, क्या बात है, थोड़ा सोच के तो बोलो भी, कुछ वाजिब तो बोलो। फिर क्या बोला, देखो आप लोग क्या गिनते हैं, मेरा अनुभव ज्ञान की आपको वैल्यू नहीं है, पढ़े लिखे तो आप लोग इंजीनियर लोग हैं, इधर किसका किस काम के, ये हथौड़ा लगाने का पैसा नहीं ले रहा मैं, ये हथौड़ा कहाँ लगाना है इसका पैसा है, मेहरबानी करके अगर आप लोग सज्जन हो तो मेरे पैसे दे दीजिए, अगर आप में कोई सज्जनता हो तो दे दिए पैसे, ले लिया। अनुभव ज्ञान ज्ञान की कीमत है, और वही सत्य है। वैसे यहाँ पर भी अनुभव ज्ञान की कीमत है, शास्त्र पढ़ाई की कीमत नहीं, चाहे 12 अंक का ज्ञान हो, विकल्प है, अनुभव निर्विकल्प है। द्वादशांग ज्ञान भी विकल्प है और आत्मानुभव है वो निर्विकल्प है। निर्विकल्प के आगे किसी भी विकल्प का कोई कीमत नहीं है। इसलिए शुद्धात्मानुभूति जिसको होती है, अनुभव जिसको होता है, उसको शास्त्र पढ़ने की या कोई बंधन नहीं है। सम्यक दृष्टि को ऐसा पूछा नहीं जाता कि आप रोजाना शास्त्र स्वाध्याय करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इसको ये बंधन लागू नहीं पड़ता है। 12 अंक का ज्ञान उसको हो गया और उसको केवल ज्ञान की लब्धि होती है, स्वानुभव में लब्धि पैदा होती है, वो केवल ज्ञान की लब्धि है। उसको केवल ज्ञान लब्ध में आ गया, उपयोग इसको हो जाएगा, उपयोग इसको हो जाएगा। लेकिन एक हथौड़े का फटके का 10,000 ये बात गले नहीं उतरती, इसलिए सम्यक दृष्टि का बाह्य रूप देख करके बात गले नहीं उतरती, ये बात हो जाती है। कह रहे केवल ज्ञान की लब्धि, लेकिन वो तो ऐसा करता है फैसा करता है, ये बात हो जाती है। लेकिन अनुभव ज्ञान की कीमत वास्तव में होती है और होनी भी चाहिए।
छोगणी जी ने अपने पूछा ना प्रश्न, सो आचो छोगक सूक्ष्म ज्ञान नहीं माने के गुरु
सूक्ष्म ज्ञान नहीं बढ़ाना है।
ચાડું ગોદડું ઓળીને સૂતો છે તો પછી લાકડી ક્યાંથી વાગે, તો પગની ચાદર ઓળે તો જ વાગે સુખ ધામ।